તારીખ 6/5/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 480.
કિતના મજબૂત હોતા હૈ કિતના બલવાન હોતા હૈ યે ઇસ પત્ર કા મુખ્ય વિષય હૈ. યહાં સે જીવ ઇસ પ્રકાર સે મુમુક્ષુતા મેં પ્રવેશ કરતા હૈ. કૃપાલુ દેવ કા ભી 23 સાલ કા ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુતા કા પરિણમન કા યે ચિતાર હૈ. હમારી ચર્ચા મેં એ પ્રશ્ન આતા હૈ કે ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ કા દૃઢ મોક્ષેચ્છા વાલે કા પરિણામ કૈસે હોતા હૈ, તો એ સારા પત્ર હી ઇસ વિષય પર લિખા ગયા હૈ. પત્ર કે પ્રારંભ મેં એ પત્ર ખંભાત કે મુમુક્ષુ ભાઈઓ પર લિખા હૈ. પ્રારંભ મેં સંવત્સરી કા દિન હોને સે ક્ષમા ચાહના ક્ષમા યાચના કી હૈ. ધર્મરક્ષક ભાઈઓ, પ્રથમ સંવત્સરી સે લેકર આજ કે દિન તક કિસી ભી પ્રકાર સે આપકે અવિનય, અસાધના, અસમાધિ મેરે મન વચન કાયા કે કિસી ભી યોગ અધ્યવસાય સે હુઈ હો ઉનકે લીએ પુનઃ પુનઃ ક્ષમા ચાહતા હું. તો ધર્મેચ્છક ભાઈઓ કે પ્રતિ કે સંવત્સરી કે કારણ સે મેં એક સાલ મેં પ્રથમ સંવત્સરી કે લેકર આજ તક પૂરા એક સાલ મેં જો ભી કુછ ભી મન દુઃખ કા કારણ હુઆ હો, મન સે વચન સે કાયા સે યા કોઈ અનુચિત વ્યવહાર હુઆ હો, તો ઇસકે લીએ ક્ષમા કી ચાહના કી હૈ. અબ વિષય શરૂ હોતા હૈ. અંતરજ્ઞાન સે સ્મરણ કરતે હુએ કોઈ કાલ જ્ઞાત નહીં હોતા અથવા યાદ નહીં આતા કે જિસ કાલ મેં જિસ સમય મેં ઇસ જીવને પરિભ્રમણ ન કિયા હો. યાદ સ્મરણ આતા હૈ, ઉપર ઉપર સે વો બાત નહીં આઈ હૈ, અંતરજ્ઞાન સે વો બાત આઈ હૈ. ઇસકા મતલબ યે હોતા હૈ કે અંતર કે ઊંડાણ સે યે સ્મરણ આયા હૈ. માત્ર ઉપર ઉપર કા હમારા વિચાર નહીં હૈ, જિસમેં હમારી લાગણી સાથ સાથ હૈ, ફીલિંગ અંદર સે વાત આઈ હૈ કે એસા કોઈ ભી સમય નહીં ગયા, કાલ નહીં ગયા કે જિસમેં હમારા પરિભ્રમણ નહીં હુઆ હો. નિરંતર ઇસ જીવને પરિભ્રમણ ક્યા હૈ. દ્રવ્ય સે ભી પરિભ્રમણ ક્યા હૈ, ભાવ સે ભી સંકલ્પ વિકલ્પ કી રટણ નહીં ન કી હો, પરિણામ મેં ભી સંકલ્પ વિકલ્પ સંકલ્પ વિકલ્પ સંકલ્પ વિકલ્પ ચાલુ હી રહા હૈ. ઓર ઇસસે समाधि को न भूला हो, और ऐसा होने से आत्म समाधि मैंने संभाव उसको भूला न हो, मैंने उसको भूला है। अनंत काल में सभी काल में परिभ्रमण किया है, संकल्प विकल्प हुआ है और हमको अशांति रही है, असमाधि भाव रहा है। समाधि भाव को भूला है मतलब असमाधि भाव रहा है और असमाधि में अशांति हुई है, यानी अनंत काल से हमारा जीव ने अशांत दशा का ही भोगवटा किया है, कहीं भी आत्म शांति थोड़ी भी नहीं मिली। संकल्प विकल्प इतले अनेक प्रकार के विभाव परिणाम विकल्प राग द्वेष अनेक प्रकार के हाँ चालू ही रहा है, अशांत परिणाम चालू ही रहा है। इस जाति स्मरण ज्ञान का यहाँ विषय नहीं है, यहाँ एक विचार का उन्नान का विषय है। सभी जीव को जाति स्मरण नहीं हो, ऐसे सभी जीव को ऐसा महसूस होना चाहिए कि अरे मेरा जीव कहाँ कहाँ परिभ्रमण करता रहा, द्रव से वो परिभ्रमण करता रहा, कभी यहीं कभी यहीं कभी यहीं कभी यहीं, और भाव से भी भाव भ्रमण करता रहा। द्रव्य भ्रमण भाव भ्रमण कारण है, द्रव्य भ्रमण एक कारण का फल है, तो जीव को कहीं शांति नहीं मिली। अब देखिए ये दिया के जीव होते हैं ना, बत्ती के जीव होते हैं रात पर, इसके आगे पीछे कितना वो भ्रमण करते हैं, जरा भी उनको शांति नहीं है। ये दृष्टांत रूप से देखे तो आगे पीछे चक्कर लगाते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या कि इनकी इच्छा है वो शांत नहीं होती है। देवलोक में गया, मनुष्य लोक में गया, तिरिंज में गया, नारकी में गया, चारों गति में परिभ्रमण किया और कहीं भी इसकी इच्छा शांत नहीं हुई। अशांति इच्छा और अशांति निरंतर चालू रही है जीव को, एक पीछे एक नई नई इच्छा, नए नए संकल्प विकल्प और अशांति अशांति अशांति, कहाँ है कहीं भी शांति नहीं मिली। जिसको परिभ्रमण से थकान लग आती है उनको ऐसा सूझता है कि मैं थक गया, ये सब परिभ्रमण कर करके मैं थक गया, इस प्रकार की अशांति से भी मैं थक गया हूं, अब तो अब मुझे शांति चाहिए, जैसे कैसे भी मुझे शांति चाहिए, बस अब ऐसे अशांति में मुझे जिंदा नहीं रह सकूंगा मैं, उसे मुझे ऐसा जीवन, अशांत जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे आत्म शांति का जीवन चाहिए।
अभी तो
12 प्रकार की जो भावना है नहीं लगता है अशांति का, इसका मतलब क्या होता है कि जो सुख के नहीं देने वाले पदार्थ होते हैं, संयोग होते हैं, उसमें हमारे जीव को रुचि प्रीति, कहीं न कहीं रुचि प्रीति होती है, जिसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, वहां भी हम कल्पना आभास करके वहां रुकते हैं, तो ऐसे ऐसे सूझ नहीं आएगी, वहां हमारी जागृति होनी चाहिए कि जो जो संयोग अनित्य है, असार है, असरण रूप है, ये इस जीव को रुचि के प्रीति के कारण क्यों होते हैं, थोड़ा अपने आत्मा को टटोलना चाहिए। निरंतर यह स्मरण रहा करता है, कृपालु देव को तो ये स्मरण निरंतर रहता है, कृत्रिमता से तो वो लाया नहीं जाता। जिसको परिभ्रमण से छूटना है उनको ऐसे परिणाम आते हैं, और ऐसे परिणाम आते हैं इनका परिभ्रमण अब लंबा नहीं है। जिसको परिभ्रमण अभी बहुत लंबा है वो तो परिभ्रमण करने के कारण रूप जो भाव है उसके वेग में चढ़ जाता है, उसको तो दूसरा कुछ दिखता नहीं है, ये करो वो करो ये करो वो करो, अशांत अशांत कितना भी अशांत होता है तो उसमें से वो बाहर निकलने का उसको कंटाला आता नहीं है। आप ये प्रश्न करते हो कि ऐसा नहीं होता है तो क्या करें, लेकिन हमारा प्रश्न ऐसा है कि अशांत होने के बावजूद भी आपको कंटाला क्यों नहीं आता है। आपका प्रश्न ये कि कंटाला नहीं आता है तो क्या करें, लेकिन अशांत परिणाम में भी कंटाला क्यों नहीं आता है, अशांति क्यों रुचती है, क्यों जचती है, शांति तो नहीं है, ये बात तो सही है, तो फिर हमें हमारी आत्मा को टटोलना चाहिए कि अरे जी तुमको अशांति से थकान क्यों नहीं आती है, बस ऐसे ही जीवन जीना है, ये अशांत जीवन है वैसे ही जीवन जीना है, यही जीव का जीवन है, या कुछ शांति चाहिए जीवन में, इस प्रकार की विचारणा चलने चाहिए। और अगर इसका इलाज नहीं किया या इस प्रकार से थकान आकर के कोई रास्ता नहीं, सन्मार्ग को ग्रहण नहीं किया, तो भविष्य में कितने अनंत दुख आ पड़ेंगे इसका थोड़ा विचार कर लेना। ये जो मनुष्य भाव है वो अनंत काल में कभी मिलता है इस तरह से काकतालीय न्याय से मिला है। काकतालीय माने क्या, कि कौवा को बैठना पेड़ की डाली पे और डाली का टूटना, कोई कौवा के वजन से पेड़ की डाली टूट जाए ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन डाली खुद सड़ गई थी और कौवा बैठा और डाली का हिलना हुआ तो डाली के वजन से डाली गिर गई, तो किसी ने देखा करे कौवा ने डाली को गिरा दिया, लेकिन कौवा से कोई डाली वाली पेड़ की गिर जाए ऐसा होता नहीं है, फिर भी कभी ऐसा बनता है। ऐसा ये मनुष्य भव, कौवा को बैठना और डाली को पड़ना ऐसे ही अकस्मात आ गया है, समझ लेना, कोई अकस्मात मनुष्य भव मिल गया है और शुभ कर्म के उदय से कहो या सद्भाग्य से कहो या सौभाग्य से कहो, ऐसा परम तत्व जैन धर्म का विषय, आत्मकल्याण का विषय, ये भी हमारे सामने आया है और इसका विचार करने तक हम पहुंचे हैं। बहुत अच्छा मौका मिला है। अब यहां से वापस मुड़ जाए तो इससे बड़ा कोई अफसोस की बात भी नहीं होगी। हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर के अनंत काल का हमारा परिभ्रमण का निवेड़ा आ जाए, ऐसा कार्य करने का मौका मिला है तो वो कार्य कर लेना चाहिए। एक भव में अनंत भव की कमाई होती हो तो कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए? एक भव में अनंत भव की कमाई मिलती है, ऐसा मौका मिला है तो ये काम हमें किसी भी कीमत पे कर लेनी चाहिए। इसी को कहते हैं कि आत्मकल्याण का निर्धार यानि लक्ष्य यानि ध्येय। ऐसा ध्येय लेकर के हम इस मार्ग में प्रवेश करें तो अवश्य इसका फल आ सकता है। निरंतर यह स्मरण रहता है और यह स्मरण महावैराग्य को देता है। क्या फल आया? ऐसे परिभ्रमण की चिंतना से वैराग्य उत्पन्न होना सहज है। वैराग्य मैंने उदासीनता, मुमुक्षु के भूमिका में, मुमुक्षु की भूमिका में त्याग की भूमिका नहीं है। ज्ञानी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम त्याग कर दो, घर को छोड़ दो, व्यवसाय को छोड़ दो, खाने पीने के ऐसे ऐसे अमुक अमुक बात को छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। उदासीनता आनी चाहिए और वो भी अमुक अमुक बात में नहीं, सारे उदय के परिणाम में निरस्ता आ जाएगी। परिभ्रमण की चिंतना यथार्थ रूप से हुई है कि नहीं हुई है, इसका एक कल प्रश्न आया था कि हमको परिभ्रमण का विचार तो आता है, ये सब बात सुनते हैं पढ़ते हैं तो विचार तो आता है, लेकिन वो यथार्थ है कि नहीं है वो कैसे मालूम पड़े? ऐसा एक प्रश्न कल आया था रात को कि इसकी यथार्थता का स्वरूप यह है कि इससे निरसता यानी वैराग्य की उत्पत्ति हो जाएगी। कहीं भी रस आएगा नहीं। अगर हमको खाने में, पीने में, कपड़े बपड़े पहनने में और संसार के अनेक प्रकार के उदय प्रसंगों में रस आता है तो समझना चाहिए कि ये परिभ्रमण का विचार वो भी कोई ऐसे प्रकार के उदय से आ गया, यथार्थ नहीं है। कभी आ गया, चला गया, फिर हम वो के वैसे का वैसा हो करके हमारे उदय में प्रवर्तित करते हैं तो उसमें बड़ा फेरफार हो जाना चाहिए। इस प्रकार की चिंतना से महावैराग्य मैंने एक अंतर पड़ जाए, ऐसी फेरफार हो जाए, ऐसी उदासीनता आए बिना रहेगी नहीं। यही इस विचारणा को कि यथार्थता को सूचित करती है कि विचारणा यथार्थ है, ये मालूम कैसे पड़ेगा? उदासीनता आए तो, अगर उदासीनता नहीं आई तो समझ लेना कि विचारणा हमारी यथार्थ प्रकार की नहीं है और कैसे कैसे विचार आते हैं परिभ्रमण की चिंतना के, और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों नहीं आई, हमने स्वच्छंद से ऐसे परिणाम क्यों किए, स्वच्छंद से मैंने कि किसी भी प्रकार की रोक टोक हिचकिचाट नहीं हुई, परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम करते हुए हमको हिचकिचाट भी नहीं हुई, केवल स्वच्छंद से बिना कंट्रोल अनकंट्रोल परिणाम कर दिए, बहुत तीव्र परिणाम किए तो हमारा परिभ्रमण हुआ है। तो ऐसे अब स्मरण ये होता है कि ऐसे परिणाम होते हुए हमको उदासीनता क्यों नहीं आई, आनी चाहिए थी क्यों नहीं आई, ऐसा स्मरण होता है। यानी दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए, चार कषाय की प्रकृति है, चारों प्रकार के परिणाम कभी क्रोध के होते हैं, कभी मान के होते हैं, कभी मायाचार के होते हैं, कभी लोभ के होते हैं। ऐसे परिणाम करते हुए या अन्यथा करते हुए, मैंने सही काम नहीं करते हुए, बुरा काम करते हुए, अन्यथा करते हुए, मैंने आत्मा के अहित के कार्य परिणाम करते हुए, यह बुरा है, यह हमारा अकल्याण का कारण है, ये दुख का कारण है, इससे दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना, ऐसा यथार्थ रूप से हमने क्यों नहीं जाना, क्यों निरर्गण रूप से अनकंट्रोल होकर के स्वच्छंद से परिणाम किए। अर्थात ऐसा जानना चाहिए था, हमने नहीं जाना और परिभ्रमण किया फल स्वरूप, ऐसा हमको जानने चाहिए था, क्यों नहीं जाना, अफसोस होता है। ऐसा स्मरण होने से भूतकाल के परिणाम पर अफसोस होता है कि ऐसा हमने क्यों नहीं जाना, ऐसा जानना चाहिए था फिर भी न जाना, जानना चाहिए था फिर भी हमने न जाना, यह भी पुनः परिभ्रमण करने से विरक्त बनाता है। ऐसा विचार हमको परिभ्रमण के प्रति वैराग्य को ले आता है, कभी परिभ्रमण के परिणाम हमको करने नहीं है। अनेक प्रकार के क्रोध मान माया लोभ तो किए हैं, कभी कभी तो सद्धर्म का विरोध किया है, कभी तो सत्पुरुष का विरोध किया है, कभी सत्शास्त्रों का विरोध किया है, कभी धर्म के सच्चे सिद्धांतों का विरोध किया है, कभी मुनियों का विरोध किया है, और कभी सर्वज्ञ परमात्मा का भी विरोध किया है। ये बहुत अकल्याण के परिणाम है, ये परिणाम से भव भ्रमण, ऐसे परिणाम से तो भव भ्रमण बहुत बहुत बढ़ता है। तो ऐसे परिभ्रमण के कारण रूप परिणाम का स्मरण करते हुए हमको ये विचार विरक्तता ले आता है, मैंने परिभ्रमण की चिंतना कारण है और विरक्त होना इसका फल है। यथार्थ चिंतना आए और उदासीनता ना आए, ऐसा बनता नहीं है। आएगी आएगी और आएगी उदासीनता। ये यथार्थ प्रकार के प्रवेश काल की उदासीनता है। यथार्थ प्रकार की उदासीनता और वैराग्य आया है, हमने इस वैराग्य से त्याग भी किया है, ऐसे वैराग्य से दीक्षा भी ली है, संन्यास भी लिया है, ऐसा भी किया है, लेकिन वो अयथार्थ हुआ है, यथार्थ नहीं हुआ है। परिभ्रमण की चिंतना से जो विरक्तता आती है, निरसता आती है, उदासीनता आती है, वैराग्य होता है, वो यथार्थ है। वैराग्य होना वो यथार्थ नहीं है, किस कारण से वैराग्य होना इस पर यथार्थता का आधार है। अन्य मत में भी वैराग्य होते हैं, जैनियों में भी सभी संप्रदाय में वैराग्य होने पर त्याग और दीक्षा का अंगीकार करना होता है, लेकिन वो प्रकार यथार्थ होता है कि नहीं होता है इसका विचार करना जरूरी है। कोई भावुकता में आकर के करता है, कोई भावावेश में आकर के करता है, लेकिन मुक्त होने की यथार्थ भावना से अगर होता है तो वो यथार्थ है। परिभ्रमण की चिंतना कहो या मुक्त होने की यथार्थ भावना कहो, एक ही बात है, ओ वैराग्य और ओ उदासीनता यथार्थ है। यहां से इस सन्मार्ग के प्रति जाने की यथार्थ शुरुआत इस प्रकार से होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये तो हमने दो पत्र का स्वाध्याय किया, 86 और 195, दो पत्र का स्वाध्याय किया, इसमें वो बात आई कि ऐसी चिंतना आए बिना कभी किसी को मार्ग का पता चला, मार्ग का क्या, मार्ग की दिशा का भी अल्प अंशंश में भी भान हुआ नहीं है। तो यही यथार्थ प्रवेश करने की चैनल है। और स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं न जी सकूं, राग किया है किसी व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति राग ऐसा किया है, तीव्र व्यक्ति राग किया है। कैसा तीव्र व्यक्ति राग किया है कि मैं एक पल भी इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, इतनी आकुलता आई है राग के। ऐसे कितने ही पदार्थ, स्त्री आदि खास करके, दूसरे दूसरे भी होते हैं, कभी किसको कोई होते हैं कोई होते हैं, लेकिन ये सबको अनुभव में आए कि तीव्र राग कहाँ होता है। स्त्री पुरुष को स्त्री के प्रति होता है, स्त्री को पुरुष के प्रति, पति के प्रति होता है। ऐसे व्यक्ति को अनंत बार छोड़ते, उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया, ऐसे व्यक्ति को छोड़ भी दिया और इसका वियोग हुआ कितना काल हुआ, अभी अनंत काल चला गया, तथापि उनके बिना जीवन रह गया, उनके बिना भी अब मैं जिंदा रहा हूँ, मरा तो नहीं, और आत्मा तो कभी मरता नहीं है, लेकिन उतनी वेदना हुई वियोग की कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं, निरस हो जिन्ना जीवन जीना ही बेकार हो जाएगा, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, अब क्या जीने का क्या कारण है, ऐसा तीव्र राग किया, फिर भी मैं जिंदा रहा, अनंत काल तक जिंदा रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है। एक पर भी जिंदा नहीं रह सकता ऐसा हमको फील हुआ, ऐसा हमको लगा था, और आश्चर्य की बात है कि अनंत काल तक हम जिंदा रहा। तो ये परिणाम बिल्कुल कल्पना वाले थे, बिल्कुल कल्पित परिणाम थे। ऐसी कल्पना करते हुए हमें ऐसी कल्पना करते हुए ऐसे परिभ्रमण को कल्पना परिभ्रमण का कारण है। हमें क्यों कुछ विचार नहीं आया कि ये कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे विचार आने चाहिए थे। अर्थात जिस जिस समय वैसा प्रीति भाव मैंने राग भाव किया था उस समय वह कल्पित था। देखो यही लिखा है कि उस समय ये बिल्कुल कपोल कल्पना थी, कोई दम नहीं था इस बात में कि मैं जिंदा नहीं रख सकता, इसमें कोई दम नहीं था, केवल कल्पना ही बात थी, क्योंकि मैं अनंत काल तक जिंदा रहा। ऐसा प्रतिभाव क्यों हुआ, ऐसा कल्पित भाव हमको क्यों हुआ कि जिस कारण से हमको परिभ्रमण करना पड़ा, जिस कारण से हमको दुख भोगना पड़ा, ऐसा कल्पित भाव हमने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसी परिभ्रमण करने के कारण रूप परिणाम हमने कल्पना उठा उठा करके किया, ये हमारी मूर्खता के सिवा और क्या था, तो उसके सिवा कुछ बात नहीं थी। થાય છે ત્યારે ફરી ફરીને વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, જોર જોર છે, ત્યારે કેસે પરિણામ કે કલ્પના કે એ તો બાત લિયા રાગ કા, કે રાગ કે પરિણામ એસે કિયે કલ્પનાયુક્ત। અબ દ્વેષ કી બાત કરતા હૈ કે ઓર સ્મરણ હોતા હૈ कि जिसका मुख किसी काल में भी न देखूं, बहुत द्वेष आया था। कभी कभी तो किसी व्यक्ति के प्रति इतना द्वेष आया था कि जिसका मुख किसी काल में भी मैं नहीं देखूंगा, उसके सामने नहीं देखूंगा, जिसे किसी काल में मैं ग्रहण ही न करूं, मैं किसी काल में भी ग्रहण ही नहीं करूंगा, कभी इसके साथ संबंध नहीं रखूंगा, सामने नहीं देखूंगा, कोई प्रकार का संबंध नहीं रखूंगा, उसके ही घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसके ही घर में स्त्री बन के आया, पत्नी बन के आया, जिससे उतना द्वेष किया था। कर्म की गति बहुत विचित्र है और अटपटी है, उसके घर आना पड़ता है, उसके घर में दास के रूप में, नौकर चाकर के रूप में आया, दीन होकर के, भाई साहब मुझे काम दो, मुझे रोटी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी, दास के रूप में आया, दासी के रूप में आया, नाना जंतु के रूप में क्यों जन्मा, और उसी के घर में अनेक प्रकार के तिरियंत बन करके आया, कभी मक्खी हुआ, कभी चींटी हुआ, कभी मकोड़ा हुआ, कभी छिपकली हुआ, ढेंगरोड़ी आपड़े कहिए छिपकली, ऐसे कभी चूहा हुआ, क्या उंदर बन के आया, कि उसी के घर में डर बना के मुझे रहना है। अरे तुमको तो उतना द्वेष हुआ था कि उसके सामने नहीं देखना है, तो उसी के घर में अभी रहने का मन हो गया, पिंजरे में पकड़ करके बाहर छोड़ दे, फिर वहां आ जाए, रात्र को छुप छुप करके फिर घर में एंट्री लगा दे कहीं से भी। अर्थात ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में जन्म लेना पड़ा, ऐसे द्वेष के परिणाम से इसके ही घर में आ जाए, ऐसा उदय हो जाए, ऐसा जन्म लेना पड़ा। और वैसा करने की तो इच्छा न थी, उससे कोई संबंध रखने की इच्छा नहीं थी, सामने देखने का भी परिणाम नहीं था, बहुत द्वेष आ गया था, लेकिन वहीं आने का हुआ इच्छा विरुद्ध। कहिए, यह स्मरण होने पर इस क्लेशित आत्मा के प्रति जुगुप्सा नहीं आती होगी, अर्थात आती है, हमारे पर हमको धिक्कार आता है, ये धिक्कार है इस आत्मा को, जिसके प्रति उतना द्वेष किया वहीं आया, जिसके सामने भी नहीं देखना था वहीं आने का हुआ और वहीं रहा, धिक्कार की बात है, कोई ठिकाना परिणाम का नहीं है। अधिक क्या कहना, अधिक क्या कहना, मैंने हमने ऐसी ऐसी गलतियां की है, ये कोई एक जीव की बात नहीं है, किसी एक जीव को लक्ष्य में रख करके ये विचार करने, ये हमारे सबके भूतकाल का इतिहास है, फलाने फलाने का ऐसा नहीं है, सबका ऐसा इतिहास है, अनंत काल में ऐसी गलतियां करता आया है जीव, तो हमको तो अब हमारे हमारे परिणाम को ही हमारे जीव पर ये बात लेनी है, किसकी बात चलती है, ये हमारी बात चलती है, स्वलक्ष्य विचारधारा में ये बात लेनी है, परलक्ष्य विचार में ये बात लेनी नहीं है, क्योंकि सभी जीव का अनंत काल से परिभ्रमण हुआ, तो कोई फालतू से फालतू कारण से तो नहीं हुआ, मुफ्त में तो नहीं हुआ, ऐसे ऐसे भूल वाले चित्र विचित्र परिणाम किए हैं और इसी कारण से परिभ्रमण हुआ है सबका। अधिक क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, ऐसे भ्रांति के कल्पना के परिणाम से परिभ्रमण किया, पूर्व के काल में पूर्व भवांतर में, उसका स्मरण होने पर, उसका विचार करने पर अब कैसे जीना, यह चिंतना हो पड़ी है कि अब क्या करना, ऐसा अनंत काल का परिभ्रमण नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना, ये चिंतना आ पड़ी है। अब हमको संसार के छोटे मोटे प्रसंग की चिंतना नहीं है, कहने का मतलब ये है, जीव को संसार के संग प्रसंग के इतनी चिंता है तो आत्मकल्याण की चिंता नहीं होती, और आत्मकल्याण की यथार्थ चिंतना होगी तो संसार की चिंतना छूट जाएगी, ये चिंता छूट जाएगी, क्योंकि वहां तो उदासीनता आ जाएगी, संसार के प्रसंग में तो उदासीनता का हमको हमको कोई रस नहीं है, हमको राग के द्वेष के सभी जो भी निमित्त है प्रारब्ध के अनुसार उसमें अब कोई रस नहीं है, अब तो हमें हमारा एक ही काम करना है कि अब ऐसा हम क्या काम करें कि जिससे हमारा परिभ्रमण न हो, बस हमको एक ही काम करना है, दूसरा कोई अब करना नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, और इस समस्या का समाधान जुटाने के लिए हमें जो कुछ करना है सो करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। अब कैसे जीना यह चिंतना हो पड़ी है, फिर जन्म लेना ही नहीं क्या, दोबारा जन्म लेना ही नहीं। ये वैराग्य का मुनिराज का प्रकरण जब शास्त्रों में आता है तो कोई मनुष्य, कोई पुरुष मनुष्य दीक्षा लेता है तो इनके परिवार वाले जो इनके प्रति राग करते हैं, इनके माता पिता स्त्री पुत्र भाई बहन वगैरह जो भी होते हैं उनको बहुत दुख होता है, सब रोने लग जाते हैं। क्या रोने लग जाते हैं? क्योंकि राग है वो संयोग को चाहता है और संयोग का, प्रिय संयोग का वियोग होता है तो वियोग से वेदना आती है और रोने लग जाता है। वो जीव क्या कहता है? अब तो आपको रुलाता हूं, आप सबको रुलाने का प्रसंग हो गया है लेकिन वो आखिर का है। अनंत बार ऐसे रुलाया है, अब फिर से रुलाने का प्रसंग आएगा
नहीं?
नहीं, ये आखिर का प्रसंग है। अब मैं मुक्ति के मार्ग के प्रति गमन करता हूं और मुक्त हो जाऊंगा, फिर से संसार में जन्म ही नहीं लूंगा। जन्म लूंगा तो सब संबंध हो जाएंगे ना और सब रोने लगेंगे ना, तो अब जो है वो आखिर का संबंध है। अब नया संबंध मेरे से होने वाला नहीं है। तो बहुतों को रुलाया है, अभी किसी को रुलाने का दोबारा आइंदा कोई प्रसंग रहेगा
नहीं।
मुनिराज को ऐसा वैराग्य होता है। कहते हैं कि फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं। ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है, दृढ़पना आता है, कभी जन्म नहीं लेना है। कितनी दृढ़ता, इसका बहुत सुंदर चितार इस पत्र में कृपालु देव ने शायद अपने अनुभव से लिखा है। खुद की उत्तम मुमुक्षुता का, उत्तम मुमुक्षुता की भूमिका चल रही है। जब ये पत्र लिख रहे हैं वो 1946 के भादवा में है, 1946 के भादवा में वो लिख रहे हैं और आसोज में दिवाली के करीब करीब उनको सम्यक दर्शन हुआ हो गया है। तो सम्यक दर्शन के ठीक पूर्व भूमिका में ये परिणमन उसका चला होगा और उसको उन्होंने पत्र पर लिखा है, पत्र में दिया है। खंभात के कुछ भाई लोग जो परिचय में आए थे उनके पर ये पत्र लिखा है कि इतना दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है कि हमको फिर जन्म लेना ही नहीं है। मैंने हमको इसी भाव में मुक्ति में जाना है। क्या दूसरा जन्म हमको नहीं लेना है, इस ही भाव में हमको मुक्ति में जाना है, इसी भाव में परिपूर्ण शुद्ध होने का है, दूसरा भाव नहीं करना है हमको। ऐसा जोर से प्रवेश हुआ है कि, हाँ? कितना बहुत जोर से प्रवेश हुआ है कि इस भाव में ही मुक्ति लेना है, फिर जन्म ही नहीं लेना है। परंतु कितनी ही निरुपायता है। अब जो है यहां से लेकर के उन्होंने अपना मंथन को प्रदर्शित किया है, मंथन को व्यक्त किया है कि जब इतना जोर से अंदर में भाव आया कि दूसरा जन्म ही नहीं लेना है, इसी भाव में मुक्त होना है, तो सामने कई प्रकार के विचार आ गए। ऐसा करने में तो कई प्रकार की निरुपायता भी है, निरुपायता में क्या था कि कई प्रकार के प्रारब्ध योग ऐसा था कि उनको छोड़ करके वो परिपूर्ण वितराग हो जाए, ऐसा जो परिणाम आना वो इतना आसान नहीं दिखता था। फिर भी उनकी दृढ़ता अभिप्राय में कैसी थी, बाहर के अभिप्राय अनुसार बाहर में परिणाम होना, प्रवृत्ति होना बाहर में, वो अलग बात है। ऐसा होने में बहुत अन्याय दिखती है खुद को, लेकिन अभिप्राय की दृढ़ता में किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं आई, इसका बहुत आगे के वचनामृत में वो दे रहे हैं, तो उसका स्वाध्याय है, हम कल करेंगे।
जय जय मंदर भगवान, जय ओम परम कृपा रूपी कान।